ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबाम पेद्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मेक्सिको द्वारा दिए गए समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और मेक्सिको के बीच दोस्ती के ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग से के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित हाइड्रोजन, जहाज निर्माण और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सहयोग के नए रास्ते तलाश कर भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक की। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से भी बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल वे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामिनेई को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट में कहा कि अमेरिका उनकी हत्या कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से बच रहा है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा ना करने का एकमात्र कारण अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ किसी भी प्रतिशोध से बचना है। उन्होंने अली खामिनेई से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब उन्होंने G7 समिट के अपने दौरे को बीच में ही समाप्त कर दिया और ईरान की राजधानी तेहरान के 95 लाख निवासियों को वहां से निकाल जाने की बात कही है। G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसराइल में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और हवाई क्षेत्र बंद है। ऐसे में तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि जो लोग देश से जाना चाहते हैं वे सड़क मार्ग से इसराइल की सीमा पार करने के विकल्पों का इस्तेमाल करें। भारतीय नागरिकों को नियमित रूप से नई सूचना की जांच करने और इसराइली होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, जिसे www.oref.org.il/eng पर देखा जा सकता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और क्रोएशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान राजनीतिक और कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार प्रतिबद्ध है। जाग्रेब में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए क्रोएशिया में भारतीय राजदूत अरुण गोयल ने कहा कि ये यात्रा प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत है।
Visit by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is a huge thing because it's putting Croatia on the global map. So this is a first visit to Balkans that now India is focusing on Balkans in its foreign policy. So the whole region gets a big boost.
बिहार राज्य चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया में अमूलचूल प्रवर्तन करते हुए एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करके ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। मतदान प्रक्रिया में इस तरह की क्रांतिकारी बदलाव को अपनाने वाला बिहार देश का पहले राज्य बनेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये पहल राज्य में 28 जून को होने वाले आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू होगी। गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा क्रांति दिवस गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 18 जून 1946 को गोवा के लोगों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ एक साहसिक प्रतिरोध शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।